को इम्प्रूव करना, कैसे उसको और अच्छा बनाने की कोशिश में हूँ। तो हम स्कूल भी विजिट करें, अभी भी एक विजिट करके आए, तो थोड़ा सा आपसे इंतजार करेंगे। तो कौन से स्कूल में? इधर ही पास में
है। नहीं मैम, बहुत दूर है हमारा तो यहाँ।
अच्छा, फिर भी आपने इंटरेस्ट लेके आए। मैं आपने सेकंड वाला आपने कहानी सुना है ना? मैंने इनको बोला है टीचर है।
इससे पहले मैं आईसीटी में भी आई थी, उस दिन भी आप थे यहाँ पे।
नहीं
थी। तो आपको कब देखा है?
समग्र में हूँ बेसिकली, मैं समग्र शिक्षा की कोई मीटिंग में देखी हूँ।
आप लोगों के फाउंडेशन नहीं है, हम लोग यूपी गवर्नमेंट एससीईआरटी और यूनिसेफ एक स्टडी कर रहे हैं, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में डाइट का
फंक्शन कैसे
बॉटल मेरे पास एक आप
सब के परसेप्शन और व्यूज जानने। आपको क्या लगता है कि डाइट का इन्वॉल्वमेंट स्कूल के साथ, टीचर्स के साथ कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है आप लोगों के लिए?
डाइट का इम्प्रूवमेंट में वो जो भी टीचिंग स्किल्स होती हैं उनको कैसे इम्प्रूव करें और अच्छी कैसी टेक्निक्स अप्लाई करें।
आपका ट्रेनिंग मिलती है टाइम टू टाइम?
हाँ होती है, काफ़ी ट्रेनिंग होती रहती है। और हमारे मेंटोर्स हैं जो
बीआरसी के,
नहीं नहीं यहाँ के जो डाइट प्रवक्ता हैं उनको ब्लॉक वाइज मेंटोर बना रखा है।
हाँ,
तो वो लोग विजिट पे भी जाते हैं, जैसे हमारी रीबा मैम है, रीबा मैम आती हैं। अभी तो शायद वो शायद उस पर चल रही है लीव पर, क्योंकि अभी उनके बेबी हुआ है, पाँच छः दिन पहले बेटा हुआ है उनके। तो लेकिन वो आती हैं, रेगुलर विजिट पे आती हैं। कोई हम लोग जैसे स्कूल में अपने प्रोग्राम वगैरह करते हैं मिशन शक्ति वगैरह का या कोई भी, तब भी ये लोग आते हैं, मीटिंग्स में आते हैं, एसएनसी वगैरह की मीटिंग्स में। तो काफ़ी सपोर्टिव रोल रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे मतलब मोस्टली जितने भी इस वक्त प्रवक्ता हैं हमारे सारे अच्छे हैं, सबसे हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा है। सब सपोर्टिव हैं और एक पॉजिटिव अप्रोच वाले हैं।
स्कूल में कोई दिक्कत है आपके?
नहीं, ऐसी वैसी कोई दिक्कत नहीं है, एजुकेशनल वाली कोई दिक्कत नहीं है। वो तो जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स होती हैं वो तो सचिव की और बीडीओ वगैरह की होती हैं, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो
बताइए वो कैसी दिक्कतें होती हैं?
वो तो जैसे कि अब हमारे स्कूल में दो कमरे हैं जो बिल्कुल जर्जर हैं, जिनके नीचे हम बच्चों को नहीं बिठा सकते, उनके लिए हम लगातार शिकायत कर रहे हैं। तो कभी आगे आके कह जाते हैं कि हाँ हम अब करवा रहे हैं कि तब करवा रहे हैं, लेकिन जब कुछ घटना घट जाएगी उस वक्त तो वहाँ डीएम भी आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले वहाँ कोई नहीं आएगा।
ऑलराइट,
तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी बेसिक होती है कि सब घटना के बाद जागरूक होते हैं। अगर थोड़ा सा पहले चेत जाए ना, तो वो जो छुटर पुटर सी चीज़ें होती हैं वो ना हो कि कहीं पे छज्जा गिर गया, अभी हमारे जयंगारा में गिरा था, तब फिर सबने चक्कर लगाने शुरू कर दिए।
बच्चों को नुकसान तो नहीं हुआ कोई? बच्चों के लिए
जयंगारा में जो रसोईया थी
उनके
ऊपर गिरा था, रसोईया घायल हुई थी काफ़ी, तो हाईलाइट हुआ था मैटर, वहाँ पे तो डीएम तक पहुँचे थे।
अच्छा,
तो यही, तो अगर आप बाद में जा रहे हो उससे पहले आ जाओ ना आप।
बच्चों के लिए तो टीचर्स भी इतने अवेयर रहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कुछ भी हुआ तो ऊपर से बहुत प्रेशर आएगा टीचर के।
पहले आपके गोली
वही तो। और ये एक स्कूल की समस्या नहीं है मेरे ख्याल से, जर्जर छतों वाली समस्या तो हर सरकारी स्कूल की है कि छतें सबकी जर्जर हैं, और बड़ी विकट समस्या है टीचर्स के सामने। आप सभी सारी जो अभी जितने भी अप्लाई करे जा रहे हैं, एक सेकेंड। हाँ सर नमस्ते,
आप बताइए।
और आपकी टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कितने फ्रीक्वेंटली होते हैं? आपको कई बार लगता है कि प्रेशर बढ़ गया है कम होने
के लिए? प्रेशर तो नहीं बढ़ा, बिकॉज बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ऑनलाइन ट्रेनिंग्स करते हैं और ऑफलाइन करते हैं तो ऑफलाइन ट्रेनिंग का इम्पैक्ट बिल्कुल अलग होता है। मतलब मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग के फेवर में हूँ, बल्कि मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा संदीप महेश्वरी वगैरह की वीडियोस बहुत ज़्यादा देखती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा उससे इंस्पायर्ड हूँ, और दो चार मोटिवेटिंग वीडियोस मैंने कई बार बनाने की कोशिश भी करी है। लेकिन एक्चुअली मुझे टीचर्स के पॉइंट पर लगता है कि टीचर्स पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टीचिंग के अलावा बहुत सारे ड्यूटीज मिलती हैं टीचर्स को। ये एक है मुझे मतलब
एलाबोरेट करेंगे कॉन्सेप्ट।
जी जी बिल्कुल, जैसे कि हम लोगों के यहाँ जैसे अभी टीचिंग से ऊपर शिक्षक संकुल होते हैं, मैं शिक्षक संकुल हूँ, उसके अलावा मुझे यहाँ पर तहसील में बीएलओ बना दिया गया है, नगर निगम उसका विधानसभा का भी बना दिया है, उसके बाद नगर निगम वाला भी बना दिया गया है, दोनों एरिया अलग अलग दे दिए हैं। तो उसमें क्या होता है, टीचर्स प्रेशराइज होते हैं डेफिनेटली। अब हम उसका अमाउंट होता है जो 500 रुपीज़ के लिए कोई अपनी जान नहीं लगाएगा, ऑनेस्टली बोल रही है ना, उसके लिए कोई अपनी जान नहीं लगाएगा। वो आपको कहे कि आपको टीचिंग टाइम के बाहर करना है, फील्ड वर्क करना है। अब आप बताओ, 4 बजे तक स्कूल में बैठेगा आदमी। हमारा स्कूल 25 किलोमीटर दूर है, मैं 25 किलोमीटर आऊँगी तो मुझे 4:30 बजता है। उसके बाद मैं फील्ड वर्क करूँगी तो मैं क्या घर से संन्यास लूँगी, बच्चे भी तो देखूँगी।
ये लोगों का तो
मेरा 5 ईयर्स का बेटा है तो मैं उसको भी तो देखूँगी। तो मतलब
फील्ड में क्या काम होगा, डोर टू डोर सर्वे
उनका लें, या फिर कुछ ये हो रहा है कि जैसे दो टीचर्स हैं तो उनको 2 दिन स्कूल से रिलीव किया जाए, या इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए।
बीएलओ वाला काम
होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए।
डोर टू डोर सर्वे है, इसमें टीचर का कुछ नहीं है, हमें तो पैसा मतलब मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है वहाँ भी, लेकिन उस बच्चे का नुकसान हो रहा है जो बच्चा स्कूल में पढ़ने आ रहा है, उसको टीचर की अवेलेबिलिटी नहीं है,
नहीं मिल रही डेफिनेटली। और हमारा इनकम,
हमें तो सैलरी मिल रही है, हम कोई भी काम करें।
फ्रीक्वेंटली ये सब करना पड़ता है ना आपको।
आज यहाँ से फ़ोन आ गया, आज वहाँ से फ़ोन आ गया। अब 2 दिन से एक प्रत्याशी है, जब हम उसके घर डोर टू डोर गए तब उसने नाम दिया नहीं है, अब वो सडनली वो उसमें आ गया, आरक्षण में वो प्रत्याशी बनना है। अब मैडम जी मेरा नाम बढ़वाओ, मैडम जी मेरा नाम बढ़वाओ। मैंने कहा भाई मैं तो अपना काम दे चुकी हूँ, 8 तारीख को मेरी तरफ से हो चुका है, अब जहाँ साइन वाइन चाहिए वो करवा लेना, और क्या कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती। ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ा सा दिक्कत
परेशान का
ये परेशानियाँ आती हैं।
और ट्रेनिंग आपका आपने बताया ऑफलाइन ज़्यादा बेहतर रहता है,
मुझे ऐसा लगता है कि ऑफलाइन ट्रेनिंग का
इम्पैक्ट ब्लेंडेड
ऑनलाइन सेशन होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्कूल टाइम में होते हैं, फिर वही चीज़ होती है कि बच्चों के साथ आप फिर टाइम स्पेंड नहीं करते, जो 12 बजे 2 बजे यूट्यूब सेशन डाल दिए जाते हैं
उससे हाँ कोई फायदा नहीं,
उससे कोई फायदा नहीं है ना, तो हम यूट्यूब सेशन ले पाते क्योंकि बच्चे बार बार 2-2 मिनट पर आके कुछ
मैम जी ये हो गया, क्योंकि हमें इस तरह से भी देखना है कि वो बच्चे भी बहुत छोटे हैं,
नहीं कर
पाते हैं। मतलब हाँ।
बच्चों को देखें अगर तो वो 5 साल से 10 साल
5 महीने शांत बैठ बिठाना ही एक चैलेंज है उनका।
यहाँ बैठ के और उस माहौल के बारे में सोचना ही, जब आप उस फील्ड में होते हो ना, उस क्षेत्र में होते हो,
मालूम
है तब हम उनको फील करते हैं।
अभी हमारे घर के 2 बच्चे ही होंगे छोटे छोटे, दुखी कर लेते हैं, वहाँ 100-150 बच्चे रहते हैं तो उनसे हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते,
जगह भी नहीं है ना क्लासरूम में बहुत
नहीं, और उनकी सेफ्टी भी इशू है, उन्हें पढ़ाना भी इशू है, और उनको आप मतलब कोई पनिश नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते।
अभी हुआ ना हमारे स्कूल में, अभी 3-4 दिन पहले ऐसी लंच के टाइम पे मैं बाहर खड़ी हुई थी, और ऐसी बच्चों ने वो चम्मच लेने अंदर गया होगा, उसका धक्का मार दिया, वो गिरा, उसका हाथ टूट गया, यहाँ से पूरी कोनी अलग। और उस वक्त ना गांव में प्रधान था ना कोई, मेरी भी गाड़ी मेरे पास नहीं थी, बड़ी मुश्किल से व्यवस्था करी, पैसे वैसे अरेंज करके उस बच्चे को आगरा भेजा, और फिर इनके यहाँ डॉक्टर नवीन चाहर के यहाँ उसके बच्चे का प्लास्टर करवाया।
अब सेफ्टी मेन है ना, मैंने
अरे स्कूल में एक रोज भी आ जाती
है ना, सेफ्टी मेन है, लेकिन जब ऊपर से चेकिंग आती है तो हम पे ये प्रेशर है कि ये वाला मॉड्यूल मेन है, ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ। फिर अगर अभी इंग्लिश वाली हमारी ट्रेनिंग हो रही है, यहाँ की चेकिंग आएगी तो कहेंगे सारे मॉड्यूल बेकार में है,
संपर्क वाला
वो मॉड्यूल है, निपुण भारत है, ये
लक्ष्य निपुण लक्ष्य पूरा करे।
बहुत चैलेंजिंग है स्कूलों में नौकरी करना, ये कि परिस्थितियाँ बदल रही हैं, हम भी सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं एक अच्छा माहौल, एक अच्छी चीज़ बच्चों को दे पाएँ।
और एक जो मैम सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है कि जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं उनमें हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं वो लक्ष्य बहुत बड़े बड़े बना रहे हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं होता कि उनके
बैकग्राउंड
जो होते हैं ना वो उतने अवेयर नहीं होते। हमारा बच्चा एक दिन स्कूल नहीं जाता, हम पूरे सारे सर्च मार लेंगे, काम क्या हुआ, फोटो भेजो, ये करो वो करो, लेकिन उन्हें चाहे वो शादी में गए हैं तो उन्हें कोई मतलब नहीं होता आने से कि वो कितने दिन में आ रहा है, बच्चा क्या कर रहा है। तो ये एक जो बेसिक डिफरेंस है, तो इसमें पेरेंट्स की सहभागिता कहीं नहीं है, जितना भी प्रेशर है वो सारा टीचर्स के ऊपर है। कभी पेरेंट्स को नहीं कहेंगे कि तुमने ये काम नहीं किया तो हम ये वाला पैसा आधा कर देंगे, या DBT का अमाउंट है या कुछ अमाउंट है तो ये नहीं देंगे, या तुम्हारे हम राशन की सुविधा हटा दिया जाएगा, इस तरह का कोई प्रेशर उनके ऊपर नहीं है। हम चाहते हैं इवन DBT के लिए आधार का लेने जाते थे तो क्या कहते थे, मैडम जी मालूम है तो हमारा बच्चा फेल नहीं करोगे, मैडम जी
प्रमोट करोगे,
काट दो तुम नाम, हम भी देखते हैं तुम कितना नाम काटते
हो। तुरंत यही
तुम काट दो नाम, हम देखते हैं
ऐसी कौन सी मैडम है जो नाम काटेगी।
अरे क्यों काटोगे यार, किसी बच्चे का
नहीं मालूम है ना पूरा आरती का पूरा है।
बाकी किसी चीज में सजग हुए नहीं हुए, लेकिन इन चीजों में सजग हुए हैं। हमारे जो क्या है, हमारे क्या उनको बेनिफिट्स है वो सब पता है, और क्या
उनकी जिम्मेदारी नहीं पता।
ऑनलाइन शिकायत करने के तरीके
उनको
ऑनलाइन शिकायत
देंगे मैडम जी,
मुख्यमंत्री
अच्छा
मैडम 10 मिनट लेट आते हैं, 15 मिनट लेट जल्दी चले जाते हैं। मतलब गए हम काम से हैं, हमको बुलाया गया है बीआरसी से फोन करके, मैडम तो चली गई, तुम जा रही हैं मैडम
का एक पोर्टल बनाया था, वो चल रहा है लक्ष्य है, एससीईआरटी ने दो चलाया
प्रेरणा
लक्ष्य,
उसके लिए स्पॉट असेसमेंट की।
हाँ इतना सेंटर से रेकमेंड हुआ, नियरली 1 करोड़ उस चलाने के लिए,
चलाने के लिए
प्रेरणा लक्ष्य
क्लास 1, 2, 3 अभी तो उस पे शो हो रही है बस।
अच्छा पूरा नहीं हुआ,
4 और 5 नहीं है, मैंने कल ही देखा था फिर।
अच्छा
मुझे तो सबसे ज़्यादा प्रेशर लगता है तो अदर ड्यूटीज़ हैं। लास्ट ईयर में मैं कहूँ, मेरे जब विधानसभा वाला इलेक्शन हुआ था तो गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम स्कीम चलाई थी कि 80+ वाले कैंडिडेट्स को घर से वोटिंग करानी थी, है ना, फर्स्ट टाइम चलाई थी। तो मेरी जो लिस्ट बन के आई थी तो उसमें एक लेडी की एज होगी 79। अब वो भाई हम भी ह्यूमन बींग ही है, हम मैं बोल रही कि हो सकता है कि इसकी साल एक साल उम्र बढ़ गई हो। अब वो जिस दिन इलेक्शन हुआ ओ गॉड, उसका तो लड़का मुझसे लड़ने आ गया और मैडम जी तुम्हें तो जेल करवाऊंगा और मैडम जी तुम्हारे नाम का पोर्टल पे शिकायत करूंगा। पर मैंने उसे बहुत भाई साहब करके बहुत समझाया। सुबह के 7 ही बजे की बात थी, मैंने कहा भाई साहब कोई बात नहीं, भाई साहब मैं भी नई हुई हूँ और मुझे 15-20 दिन ही हुए थे मेरे, मतलब मैडम चली गई थी। तो मैंने कहा भाई साहब मैं भी नई हुई हूँ, फिर मैं मुझे बहुत गुस्सा आई। फिर मैंने कहा आप ऐसा है, आप पोर्टल शिकायत कर दो। मैंने जिस तरह आप शिकायत करोगे उस तरह हम स्पष्टीकरण देंगे। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है कि आप ही की सुनेगी सरकार, तो सभी की सुनेगी ना। मैंने कहा आप फिर वो बाद में, अरे मैडम जी अरे आप भी सुनो, आप इतना गुस्सा कर रहे हो, बल्कि मेरे हस्बैंड तो उन्हें हिट करने लगे वो। तो मैंने कहा वो अगला आदमी बेचारा इतनी, मतलब मेरे हस्बैंड को तू क्यों बोल रहा है, तू क्यों बोल रहा है, इसमें इनको इतना मतलब अजीब सा लगा मुझे यार।
अरे बहुत रोज हम एक नया चैलेंज झेलते हैं, हमें नहीं पता होता कि यार स्कूल जाके हमें क्या नया देखने को मिलेगा जो पिछली चीज से बिल्कुल रिलेट नहीं होता।
नहीं मतलब अब लेसन में कौन से काम करो, वही ना लेसन, बाकी सारे काम करो, क्योंकि आपको सारे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके देने, इतने सारे ऐप डाउनलोड करवा दिए, इन ऐपों को खोल खोल के देखते रहो, बच्चों का पढ़ाओ, फिर कहते हैं फोन लेके बैठे रहते हैं टीचर
ग्रुप में कुछ अवेयर
जब देखो हाँ वो भी
ना अवेयर हो तो दिक्कत, ज्यादा अवेयर हो तो दिक्कत।
हमारी मैम ये स्काउट गाइड की हेड है पूरे आगरे की।
अच्छा
बहुत टैलेंटेड लोग अब यहाँ आ रहे हैं और बहुत कुछ करना चाहते
हैं,
बट उनको ना करने का मौका तो मिलता नहीं है, बाकी सारी चीजों के दबाव में दबाव दिया है। हेड है नहीं स्कूलों में तो
एमडीएम की व्यवस्था करने में ही लगा रहता
है, एमडीएम में टेस्ट करवा दो ये सब।
एक और ये नियम बन गया है कि अब जहाँ 150 बच्चे नहीं होंगे वहाँ हेड आएगा ही नहीं, कभी
नहीं आएगा।
तो इंचार्ज तो बेचारा वो ना सहायक है ना वो हेड है, वो बीच में फंसा हुआ है।
जो टीचर है वो उसे हेड मानते नहीं,
टीचर का उसको सब
हेड
वो छोड़ो वो कोई बात नहीं है, पर एटलीस्ट वो सारी जिम्मेदारी उठा रहा है तो उसका
उसका कुछ नहीं
बल है,
बहुत परेशानी होती है।
तो हमें उसके बात को फॉलो करना चाहिए, पर मैक्सिमम लोग नहीं करते, बोलते तो शायद ही तो
वैकेंसी का भी है ना, बहुत सारे
मानक अनुसार टीचर तो है ही नहीं विद्यालयों पे,
बस मानक से ऊपर काम करवाया जा रहा है। काम मानक से डबल ट्रिपल पता नहीं कितने मंजिल ऊपर करवाया जा रहा है,
लेकिन ये फिर भी जो टीचर चाहते हैं वो लगे हुए हैं
कर रहे हैं,
धुन में काम कर रहे हैं, ये कुछ अच्छा होगा।
निष्ठा ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया आप लोगों ने?
हाँ वो तो बहुत पहले हुई थी,
हाँ नहीं उसमें थे आप लोग।
अच्छा ट्रेनिंग तो सब करते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वो कोशिश करते हैं कि यहाँ भी थोड़े से टच में रहें। तो ये है कि अपने लिए भी थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए।
भी अच्छे एक दो स्कूल आज विजिट किया,
आप लोग काफी अच्छा विजिट करने आए होंगे ना?
हमें डाइट का है मेन, हमारा
मेन डाइट
डाइट क्या है
बट इसके साथ साथ हम डाइट स्कूल्स में क्या इन्वॉल्वमेंट है किस तरीके से वो भी
आप दिल्ली एनसीईआरटी से आए हो
नहीं हम लोग टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई से हैं
मैं दिल्ली से समग्र शिक्षा के मैं
आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए काम करते होंगे
नहीं 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 एजुकेशन के लिए
इनका प्रोजेक्ट कोर्स का प्रोजेक्ट है
प्रोजेक्ट के अपना काम कर रही हैं दे आर डूइंग देयर है ना प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट है इनका कोर्स के साथ ना फील्ड का एक्सपीरियंस का भी एक है क्रेडिट्स है हाउ मच पॉइंट्स कितनी पॉइंट्स
क्रेडिट्स ओनली मैम नॉट
टू क्रेडिट्स
मतलब इसमें जो भी फसल हो रही होती है तो दे इन्वॉल्व होता है ठीक है तो वो क्यों स्कूल आएगा अगर हम उनके पेरेंट्स से कहते हैं आप बच्चे को भेज नहीं रहे तो बोलेंगे मैडम तुम खावे दे रही हैं सीधे ये बोलती हैं भाई खाने के लिए हम अरेंज कर रहे हैं तो उनकी प्रायोरिटी है कि हम खाना अरेंज करें
और फिर हमें भी ये चीज़ देखनी पड़ती है जैसे किसी का बच्चा चार पांच बच्चे हैं वो खेती में अपने बच्चे को डालेगा तीन डालता है वो जैसे तो उसको स्कूल आने से उतना बेनिफिट वो ये नहीं सोचेगा कि मेरा बच्चा डीएम बनेगा वो ये बात सोचता ही नहीं है वो तो ये कहेगा रोजमदारी वाला काम जो है वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है
स्कूल भेजने से बेहतर गाँव में खेत में मेरे आलू बनवाना ज़्यादा पसंद है ये आलू के चार कट्टे भरे आएगा तो उसे तीन
हम इतना भी मोटिवेट करें वो नहीं हो है ना पेरेंट्स
एक्चुअली मैम देखिए उनकी गलती नहीं है क्योंकि उनके लिए वो ज़्यादा ज़रूरत है मतलब वो ज़रूरत है कि अभी आलू का सीजन है तो वो इतना इकट्ठा कर लें कि अपना एक दो महीने उनका चल जाए ठीक है तो ये उनकी नेसेसिटी है तो अब सब क्यों इंसान खाने के लिए तो अब वो उस बाद में आती चीज़ें कि मतलब हम पढ़ने आ रहे हैं हम खा के आ रहे हैं तभी आएगा वो पढ़ने
रोटी कपड़ा और मकान बेसिक नीड है बाकी सारी नीड उसके
बाद है बिल्कुल
तो अब उनको कितना भी बोले नहीं बेटा ये होगा
ड्रॉप आउट होते हैं किस रेट पे होते हैं आपके से
आ जाते हैं ड्रॉप आउट का समय आ जाते हैं पर डेली आएंगे इसकी गारंटी नहीं
ड्रॉप आउट ड्रॉप आउट नहीं
है इतना ज़्यादा नहीं है
बच्चे तो स्कूल आ रहे हैं काम कर रहे हैं
कोविड के टाइम पे आप लोग घर से ही ऑनलाइन करवाए आपको ट्रेनिंग पहले दिया था ट्रेनिंग किसने दिया
लेकिन अभी तो मैंने आईसीटी जो अभी जीता है परसों आईसीटी आगरा का जो मैंने वो जीता है कंपटीशन वो इसी बेस पे ही जीता है क्योंकि कोविड में हमने बहुत काम किया था ऑनलाइन तो बच्चों को अवेयर करना सिर्फ गूगल मीट से सबकी मीटिंग लेना बच्चों को लगातार उनके पेरेंट्स से बात करना कि ये करो बच्चों को बिजी रखते थे
तो नहीं एकदम शुरू हुआ है ना तो आप लोगों का कुछ ऐसे ट्रेनिंग नहीं ऑनलाइन ट्रेनिंग मिली थी क्या कुछ भी नहीं अपने आप लोगों ने शुरू कर दिया
ट्रेनिंग मैडम यहाँ बहुत कम चीज़ों की मिलती है शुरू
हो गया एक्चुअली क्वालिटी टीचर्स आ गए हैं वो लोग खुद भी मैनेज कर लेते हैं काफ़ी ये भी हो गया
एक दूसरे से आप लोग आपके टीचर सर्कल वगैरह अच्छे होंगे ना आपके ग्रुप बना रहे होंगे
टीचर टीचर्स को जो पुराने
पुराने
वहाँ अगर अच्छा स्टाफ है तो मैनेज हो जाता है स्टाफ अगर नहीं सही है तो दिक्कत आती है
सही बात है उसमें भी स्टाफ
फिर आप जैसे लोगों से वो मदद लेते होंगे
वही वही कह रही हूँ डिपेंड करता है कि स्टाफ कैसा है
वैसे जनरली स्टाफ एक दूसरे को कॉपरेट कर देता है एक स्कूल से दूसरे स्कूल की कॉपरेशन लेवल ठीक ही होता
है मैम गर्ल्स टू बॉयज रेशियो क्या है आपके स्कूल्स में
मेरे यहाँ तो 50-50%
है 50-50 अच्छा और अटेंडेंस किस रेट से होती है
लगभग 80% के आसपास रह जाती है
80%
एक पॉइंट मेरा आप और नोट कर लो अगर आप जेन्युइन फीडबैक क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के आसपास इतने सारे प्राइवेट स्कूल होते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल की वैल्यू बहुत कम है मतलब वो रूरल एरियाज के जो लोग हैं वो 100 रुपीज़ के फीस वाले स्कूल को बहुत वैल्यूएबल समझते हैं और हम PSG वाले टीचर्स जो है वो साइड में हैं उनका एक ये बहुत बड़ा फेनोमिनन होता है मैडम जी 100 रुपया दे रहे हैं तो रोज जाएंगे और कुछ नहीं दे रहे हैं
इसका रीज़न क्या है
ये मुझे भी नहीं पता
है
उनके अंदर ये है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने का मतलब है कि गरीबी में बच्चा जा
रहा
है और अगर वो 100 रुपये की फीस दे के पढ़ाते मतलब अमीर हो गया वो
टू मच प्राइवेट स्कूल है मेरे स्कूल के आसपास बहुत प्राइवेट स्कूल है तो बच्चे बहुत कम हो जाते हैं बल्कि मेरा इससे लास्ट जो स्कूल था उसमें बिल्कुल प्राइवेट स्कूल नहीं थे तो वहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी का बच्चा था
हमारे यहाँ उल्टा है हमारा प्राइवेट खाली हो गया जब से हम लोग स्कूल पर गए तो प्राइवेट वाले जो रणवीर मासा में वो हमारे घर पर आए थे ये कहने कि बहू से कहो कि स्कूल पर ज़्यादा मेहनत नहीं किया करें पापा को जानते हो हमारा SD पब्लिक स्कूल खाली हो गया
नहीं एक ठीक है, एक आधी प्राइवेट स्कूल हो वो समझ में आता है, लेकिन बहुत 100-100 रुपए 150-150 रुपए की फीस ऐसी नहीं है कि आजकल कोई दे नहीं सकता, उसमें फीस में बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं तो क्यों नहीं आते।
पेरेंट्स को लगता है मैंने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाया, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, तो
चले अभी मेरा
बहुत आपका हो गया
एक्चुअली हमारे इंग्लिश की भी ट्रेनिंग चल रही है, स्टोरी टेलिंग भी चल रही है।
ओके ओके चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।